ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। सभी बाबा के बन गए, सभी बन गए। अगर बाबा के बन गए तो पुराने संस्कार तो बाकी नहीं होंगे, क्योंकि बाबा ने कहा जहां बाप है वहां बात नहीं, जहां बात है वहां बाप नहीं। कड़े संस्कार क्या है? बाबा हर दिन मुरली में ये बात बोलता है, लेकिन बाबा के पास तो बहुत मोटी डिक्शनरी है, अलग अलग शब्दों में बोलता है। अब भी बाबा को बोलना पड़ता है बच्चे संस्कारों को खत्म करो। कौन सा संस्कार है जिसने हमें बाबा से दूर किया? एक ही संस्कार है, फिर बाकी सब उसके बाल बच्चे हैं। कौन सा है वो संस्कार? सभी जानते हैं, देह भान। ये देह भान दुख की दुकान है। जब तक देह का भान है, देह का अभिमान है, इससे कड़ा संस्कार कोई नहीं, क्योंकि बाबा हमारी आत्मा का पिता है, इस देह का पिता नहीं है। और बाबा आते बरोबर सबसे पहले, पहले ही दिन जब हम सेंटर पे गए तो यही ज्ञान दिया गया कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं। और ये कड़ा संस्कार अगर हमारा यहां से नहीं छूटा, एक नहीं दस नहीं 50 साल से भी अगर हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम बाबा से मिलन की, उस आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते जो ब्राह्मण बनके करना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण बनकर सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी है? हम ब्राह्मणों की सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी है? पवित्रता। और हम ब्राह्मणों की सबसे बड़ी प्राप्ति है अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना। और वो अतीन्द्रिय सुख का झूला क्या है? जब आत्मा परमधाम में शिव बाबा के साथ कंबाइन होती है, कोई संकल्प नहीं होते हैं, जिसे हम बीज रूप भी कहते हैं, जिसे हम ज्वाला स्वरूप भी कहते हैं, वो स्थिति जहां आत्मा को जो आनंद मिलता है, वो आनंद दुनिया में कहीं किसी चीज, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु में नहीं मिलता। अपने आप से पूछें, इस अतीन्द्रिय सुख के झूले में कितना समय 24 घंटे में आप झूलते हैं? कितना समय झूलते हैं कि मैं आत्मा, बाबा की गोद में परमानंद की अनुभूति हो रही है? करते हैं। और अगर ब्राह्मण बनके उस अतीन्द्रिय सुख के झूले में नहीं झूले तो हमने सच्चे ब्राह्मण नहीं बने। कई वर्ष पहले की बात है, मैं दिल्ली गई थी, हमारे सबसे प्यारे भाई जगदीश भाई जी, मैं उनसे मिलने गई। कुछ बातें हो रही थी, बातों बातों में भाई जी ने पूछा और क्या चल रहा है। उस समय हमारे सेंटर के द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी, बॉम्बे से मैं बिलोंग करती हूँ, बॉम्बे से ज्ञान लिया, तो उस समय एक फिल्म बनी थी दिव्य ज्योति। भाई साहब को स्टोरी सुनाई थी, क्योंकि वो कहानी मैंने लिखी थी, भाई साहब को अच्छी लगी थी, फिल्म रिलीज भी हो गई थी, तो पूछा उसका रिजल्ट क्या हुआ। मैंने कहा भाई साहब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ लोग आए हैं सेंटर्स तक, उनको हमने बाबा का परिचय भी दिया, वो कहानी देख के अच्छा लगा। कहा और? मैंने कहा और क्या, ब्राह्मण बने हैं हम, बीके बने हैं, तो हमारी यही तो प्राप्ति है कि दूसरी आत्माओं को बाबा से जोड़ना। कहा बस? तब मैं ज्ञान में नहीं थी। उन्होंने कहा बस? मैंने कहा जी भाई साहब, हम तो यही जानते हैं। कहा नहीं दीदी, इतने बड़े भाई बहनों को बहुत सम्मान देते थे, तब उन्होंने मुझे बताया कि ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति सिर्फ और आत्माओं को ज्ञान दे देना नहीं है, बल्कि ब्राह्मण आत्मा बनने की, बाबा के बनने के बाद अगर बाबा की गोद में बहुत बार दिन में झूलने की आपने अनुभूति नहीं की, जिसे हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, तो आप सच्चे ब्राह्मण नहीं बने। तो आज भी वो भाई साहब की बात याद आती, इसीलिए कहा कि हम में से कितने लोग उस आनंद की अनुभूति करते हैं। उस आनंद की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब अपने पुराने कड़े संस्कारों को हमने अंतिम संस्कार किया होगा। कोई व्यक्ति मर जाता है, जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, घर में पानी नहीं पीते। अंतिम संस्कार भी हो गया, दूसरे दिन उसकी अस्थियां, फूल भी कहते हैं, उसे लाते हैं तो घर में नहीं रखते, वो भी बाहर कहीं रखते हैं, और बाद में जाके गंगा जी में या जो भी पवित्र नदी हो उसमें डाल देते, तब कहते हैं हाँ अब सब कुछ खत्म हो गया। हम बाबा के बने, हम तो वैसी मरजीवा बन गए, उस जीवन से हम मर गए, बाबा की गोद में नया जन्म लिया, ब्राह्मण बन गए, लेकिन वो जो कड़े संस्कार हैं, उसका अभी तक हमने कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार नहीं किया है। और जब तक उन कड़े संस्कारों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, वो जो लाश पड़ी हुई है वो भूत बनकर तंग करती रहेगी। हमारे कड़े संस्कार वो लाश है जो बदबू भी देगी, जो हमें भूत बन के तंग भी करेगी। तो अपने आप से पूछिए, सबसे बड़ा कड़ा संस्कार तो देह भान का है, और उसके बाल बच्चे मैं, मेरा नाम, मेरी पोजीशन, मेरी बुद्धि, मेरा योग, और बहुत सारे मैं और मेरे हैं। ये मेरापन ही हमें मैला कर रहा है, ये मैंपन ही हमें कहीं ना कहीं उस परम अतीन्द्रिय सुख के गोद में, परमात्मा की गोद में झूलने नहीं दे रहा है। तो हम अपने आप से पूछे, मेरा कौन सा ऐसा कड़ा संस्कार है जिसे बदलने की जरूरत है। देखिए, अंतिम संस्कार आग में होती है, और बाबा ने तो ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसकी प्रचंड ज्वाला में जाने के पहले अपने कड़े संस्कार का अंतिम संस्कार करके जाइए, तभी हम बाबा के साथ वो मिलन का आनंद अनुभव कर सकते हैं, जिसे ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति कहा जाता है। एक मछली बेचने वाली थी, नदी पार करके जाती थी दूसरे गांव में, मछली बेच के अपने गांव में वापस आ जाती थी। एक दिन नदी में बाढ़ आई, बहुत बारिश हो गई थी। बारिश के कारण पानी इतना ज्यादा था कि उस गांव के लोगों ने कहा कि अभी तुम्हारा जाना रिस्की है। नदी के किनारे ही बहुत सुंदर गुलाब के फूलों की बगीचा था, उस बगीचे का माली उसे जानता था, रोज आती थी जाती थी। उससे कहा बहन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे घर वालों को पता चल गया होगा कि नदी में बाढ़ आई है, आज रात तुम मेरे बगीचे में सो जाओ। मछली वाली गई, वहां पे वो लेटी, इधर करवट बदले उधर करवट बदले, लेकिन उससे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात बीत गई, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। और आधी रात के बाद उससे याद आया, जो मछली की टोकरी वो बाहर रखाई थी वो उठा के लेके आई, उसे ओढ़ के सोई और वैसे ही उसकी नींद लग गई। उसका क्या संस्कार था? मछलियों के बीच में सोना। मछली की कितनी बास होती है, दुर्गंध होती है, लेकिन वो उसका संस्कार बन गया था कि मछली की दुर्गंध के बिना उसे नींद नहीं आ रही थी। बगीचे में कहां सो रही थी? गुलाब के फूलों की, गुलाब के फूलों की खुशबू उसे नींद नहीं दे रही थी, वो बदबू वो दुर्गंध से ही उसको नींद आई। कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे? पुराने कड़े संस्कार जो बास दे रहे हैं, दुर्गंध दे रहे हैं, हमें बाबा से अलग कर रहे हैं, हमें उस ऊंची स्थिति में नहीं पहुंचने दे रहे, कहीं हम भी उन कड़े संस्कारों से, उस दुर्गंध से तो नहीं छुड़े हैं? विचार करने की आवश्यकता है। और आप सबसे नम्र अनुरोध करती हूं, अपने मन में यहां पे बातें भी सुनते जाइए और क्लास होने के बाद 2 मिनट बैठकर सिर्फ अपने आप से पूछना, मेरा कौन सा ऐसा संस्कार है, मेरी कौन सी ऐसी आदत है, मेरा कौन सा ऐसा कोई कड़ा संस्कार है जो मुझे आगे नहीं आने देता, जो मुझे लोगों से दूर करता है। होगा जरूर, कोई दूसरा जाने या न जाने, लेकिन हम जानते हैं। और अगर वो आपने लिख लिया, कल सुबह अमृत वेले जब बाबा से योग करने जाएंगे तो वो चिट्ठी बाबा के वहां रख देना, बाबा ये कड़े संस्कार आपके अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में मैं स्वाहा करके जा रही हूं। और जब आपने अपने उन कड़े संस्कारों का अंतिम संस्कार कर दिया तो आप देखेंगे, आप एकदम हल्का फील करेंगे और जैसे ही योग में बैठेंगे तो आपका योग बाबा से लग जाएगा, क्योंकि वो कड़ा संस्कार कहीं ना कहीं देह से जुड़ा होगा, किसी मनुष्य से जुड़ा होगा, किसी वस्तु से जुड़ा होगा। जो भी संस्कार आपका कड़ा होगा वो आत्मा से जुड़ा नहीं होगा, आत्मा की बातों से जुड़ा नहीं होगा, ये आप जरूर नोट कर लेना। कहीं मैपन होगा, बुद्धि का होगा, कहीं दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष नफरत होगी, कहीं ये होगा कि ये ऐसे आगे क्यों जा रहे, इनको तो ऐसे नहीं होना चाहिए। या कई बार ये भी हो सकता है हमारा कोई बोल ऐसा हो। होते तो बहुत सारे संस्कार हैं, हर एक अपना अपना संस्कार हो जानता है। किसी को दुख देने में बड़ा मजा आता है, किसी को झूठ बोलने में मजा आता है, किसी को अपशब्द कहने में मजा आता है। हम सब जानते हैं अपने संस्कार। और कोई आत्माएं तो ऐसी हैं कि भगवान को भी दोष देते हैं, इंसान को तो हम देते हैं, भगवान को भी बोलते हैं, एक दिन जरा नीचे आ जा, नीचे आके देख कैसी दुनिया की हालत हो रही है, एक दिन के लिए तुम इंसान बन जाओ, तब पता चलेगा ये दुनिया कैसी है। आप तो कहते हो कि आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, किसी से बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है, लेकिन भगवान ये दुनिया ही ऐसी हो गई है। ये भी संस्कार है, और ये भी संस्कार कहीं ना कहीं हम अपने पिता परमात्मा के लिए भी सोच लेते हैं, अगर ना भी बोले तो। भगवान ये आत्मा इतना सताती है, अगर आप होते तो क्या करते? बाबा ने कितनी बार मुरली में कहा, वो आत्मा सता रही, किसी जन्म में आपने उस आत्मा को सताया होगा। कहते हैं सास बहुत तकलीफ देती है, बाबा ने कहा किसी जन्म में तू उसकी सास रही होगी, तूने उसको सताया होगा। क्लियर बता दिया, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं बाबा को भी कहते हैं, भगवान को भी कहते हैं, ये भी देह से जुड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमें ये सत्य कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, मेरा पिता बुरा नहीं कर सकता, लेकिन हमें उसकी प्लानिंग नहीं पता है। हमारी बुद्धि इतनी दिव्य नहीं बनी कि उसकी जो प्लानिंग है उसको हम समझ सके, और जब उसकी प्लानिंग को नहीं समझ पाते हैं तो हम भगवान को भी कहते एक बार तो आना, एक दिन के लिए तो आ जाओ इस दुनिया में। कहने का तात्पर्य ये कि इन सब बातों के करीब ही हमारा कोई कड़ा संस्कार है जो हमें वो आनंद नहीं महसूस करने देता, और जब तक आप उस कड़े संस्कार का अंतिम संस्कार यहाँ पे करके नहीं जाएंगे, आप सच्चे ब्राह्मण और उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। हम ब्राह्मण भले ही कहलाएं, लेकिन दुनिया कहेगी भगवान तुम्हें मिला था, कितनी आत्मा में आनंद को भरा हुआ है, हमने तो वो आनंद के झूले में झूले ही नहीं। फिर लोग कहेंगे तुम्हारे जगह अगर हम होते ना, हम तो पूरे 84 जन्म के लिए परमात्मा से वो आनंद अपने अंदर भर लेते, और को कहते कि आपको अनुभव करना तो आओ बैठो हमारे सामने, हम दृष्टि देते हैं आपको भी वो अनुभव होगा। 3 मिनट बाबा को याद करते हैं। दुनिया में कहा जाता है हर सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी का हाथ होता है, और हम कहते इस ब्राह्मण जीवन में परमात्मा के गोद में झूलने का अगर अनुभव आप नहीं करते हैं तो वो आपकी कोई एक कड़े संस्कार का कारण होता है। आज उस कड़े संस्कार को पहचान लीजिए, और जो कुछ हो रहा है हर बात में ये सोच के चलें, मैं नहीं बाबा देख रहा है, वो डायरेक्टर देख रहा है, हरेक का रोल हरेक की एक्टिंग उसे पसंद आ रही है, मुझे क्यों नहीं पसंद आ रही, क्योंकि मैं आगे पीछे की त्रिकालदर्शी नहीं बनी जितना बाबा बना है। अगर हम भी अपनी बुद्धि को उतनी दिव्य बना ले तो हमें भी कोई चीज बुरी ना लगे। एक मंदिर में सेवक था, रोज भगवान की पूजा पाठ करता था। एक दिन कहा हमेशा यहीं पर खड़े रहते हो, एक दिन तो छुट्टी ले लो, एक दिन जरा दुनिया घुमाओ, तुम्हारी जगह मैं खड़ा रह जाता हूं। भगवान ने सेवक का कहना मान लिया, लेकिन एक आदेश दिया, देखो देखना सब कुछ लेकिन कहीं रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ खड़े रहना, कोई निर्णय नहीं लेना। कहा ठीक है। भगवान चले गए और वो भगवान की जगह खड़ा हो गया। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया, प्रणाम किया, ईश्वर बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलने जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद मिले, फैक्ट्री बहुत फले फूले, प्रणाम किया, उसका पर्स वहां गिर गया, वो नहीं देख पाया और चला गया। उस सेवक को लगा कुछ कहूं, लेकिन फिर याद आया भगवान ने कहा था कहीं कुछ दखल अंदाजी नहीं करना, नहीं कहा, वो व्यक्ति चला गया। एक दूसरा गरीब व्यक्ति आया, साष्टांग प्रणाम किया, कहा हे ईश्वर, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इतनी तो रोजी रोटी दे दो कि मैं उनको भूखा ना रखूं, उनको खिला पिला पाऊं। और जैसे ही प्रणाम करके वो लौट रहा था तो सामने पर्स पड़ा देखा, पर्स उठा लिया, देखा पैसे हैं, खुशी खुशी चला गया कि भगवान ने तुरंत मेरी अर्जी मान ली। फिर उसका मन हुआ कि मैं उसे टोकूं कि इसका नहीं है, लेकिन फिर भगवान की बात याद आई, चुप रह गया। थोड़ी देर के बाद एक नाविक आया, उसने भी प्रार्थना की, 15 दिन के लिए समुद्र यात्रा पर जा रहा हूं, मेरी नाव ठीक ठाक ले आना, जिस कार्य के लिए जा रहा हूं उस कार्य में सफलता दिलाना। और प्रणाम करके अभी पलट ही रहा था कि वो व्यक्ति बिजनेसमैन जिसका पर्स गुमा था वो पुलिस को लेके आ गया। कहा मैं अभी गया, उसके बाद यही व्यक्ति आया, इसी ने मेरा पर्स चुराया है। अब वो जो सेवक भगवान बना खड़ा था वो बोल पड़ा, इसने नहीं वो दूसरे गरीब ने तुम्हारा पर्स उठाया है। पुलिस गई, उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। जब दूसरे दिन भगवान आए तो पूछा, ससा ठीक ठाक रहा? कहा हाँ भगवान, सब ठीक ठाक रहा, बस एक जगह मैंने एक व्यक्ति गलती कर रहा था वो सुधार दिया। कहा क्या? सारी बात सुना दी। भगवान ने कहा सब गड़बड़ कर दिया, तुमसे कहा था कहीं पे भी दखल अंदाजी नहीं करना। देखो वो बिजनेसमैन इतना पैसे वाला था कि अगर उसके पैसे उतने गए थे उससे गरीब नहीं होता, लेकिन जिस गरीब को वो मिला था उस पैसे से उसके बच्चे कुछ दिन खाना पेट भर खा लेते, भूख से मरने से बच जाते, तब तक उसे कोई काम मिल जाता। और वो नाविक जो नाव लेकर जा रहा था, समुद्र में तूफान आने वाला था और वो उसमें डूब के मरने वाला था, उसको तुमने छुड़ा दिया। अब वो नाव लेके गया, उसकी नाव डूब जाएगी, वो मर जाएगी, मर जाएगा। यहाँ पे गरीब व्यक्ति को तुमने पकड़ा दिया, वो जेल में, उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्या फायदा? कहने का तात्पर्य, भगवान को सब कुछ मालूम होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, हम नहीं जानते, इसके लिए दखल अंदाजी करते और भगवान को भी कहते एक दिन तो नीचे आ जा, आएगा तब पता चलेगा। कहने का मतलब, उसको हम नहीं समझ पा रहे, भगवान के विधि के विधान में जब हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं तो कभी भी अच्छा नहीं होता। ये भी एक कड़ा संस्कार है, क्योंकि हमको देह भान होता है, भगवान देह लेना बहुत आसान है लेकिन लोगों के साथ रहना मुश्किल है। कहने का तात्पर्य, हम अपने आप में विचार करें बार बार, कौन सा संस्कार, अब शब्द बोलने का, झूठ बोलने का, शक करने का, चुड़ाने का, किसी की चीज छुपा के मजा आने में, या किसी की बुराई पीठ पीछे करने में, ये सारी चीजें हमें कभी बाबा की गोद में झूलने का आनंद नहीं लेने देगी। और अगर अभी हम वंचित हो गए तो किसी कल्प में हम ये आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अभी हो रहा है वो हर कल्प में होगा। तो अपने आप से पक्का कर लें, अपने आप से पक्का आज मन ही मन विचार करें, मेरा कौन सा संस्कार ऐसा है जिसका अंतिम संस्कार करना जरूरी है। अगर अभी नहीं तो बाबा जैसे कहते कभी नहीं, और हम सब देख रहे हैं बाबा का आना भी कम, बाबा का बोलना भी कम, और बाबा का शाबाशी देना, साल भर बच्चा पढ़ता है, हम उसके पीछे पड़े रहते, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एग्जाम आ रहे, लेकिन जब एग्जाम शुरू होते हैं तो हम कहते वाह बेटा तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में पास होगा। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हमारी भी परीक्षा का समय आ गया। बाबा एक साल से मुरली में वाह वाह कर रहा है। आज जाने के पहले आप भी वाह वाह भी करेंगे और आहा भी करेंगे, वो मैं अंत में बताऊंगी कैसे। लेकिन अभी जरूर कहूंगी कि हम आज अपने आप के उस संस्कार को ढूंढ लें, और कहीं पे भी वो रह गया है तो यहां पर छोड़ कर जाएं, ताकि कल से हम बाबा की गोद का, वो परमानंद का, वो अतिंद्रिय सुख के झूले का अनुभव करें, जो बाबा मुरली में कहते हैं अतिंद्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो, वो कौन है? हम हैं तो हम कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं, और रोज में भी कितनी देर करते हैं, कितनी बार करते हैं। बच्चा छोटा होता है तो उसको कहां अच्छा लगता है, मां की गोद में। हम भी तो बाबा के बच्चे हैं, कितनी समय बाबा की गोद में झूलते हैं। लेकिन वो झूल कब पाएंगे, जब मेरी आत्मिक स्थिति पक्की हुई होगी, ये देह का बहान खत्म हुआ होगा तब। जब तक मैं अपने आप को शरीर मान रही हूं, शरीर कभी भी बाबा से मिलने नहीं देगा। ये शरीर ही तो है, इसका भान ही तो है जो हमें परमात्मा से दूर कर रहा है। आत्मिक स्थिति होना जरूरी है, और आत्मिक स्थिति होने का मतलब ही है कि हमने पुराने कड़े संस्कारों का अंतिम संस्कार कर दिया। जब तक पुराने संस्कारों का संस्कार नहीं करेंगे, हम बाबा की गोद में झूलने का अनुभव नहीं करेंगे और न दूसरे को करा पाएंगे। हम बाबा की ही बातों से, बाबा कहते हैं ना युक्ति से मुक्ति, वहां पर हम फिर कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि चला लेते हैं। बाबा चतुर सुजान हैं, बाबा से भी ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करते हैं, अपनी किसी कमी के ऊपर पर्दा डालने के लिए। एक महात्मा जी चारों धाम की यात्रा करके लौटे, सत्संग चल रहा था, सबसे कहा मैं क्रोध छोड़ के आ गया। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो बात बात पे क्रोधित होते थे और सही में क्रोध छोड़ के आ गए। एक शिष्य को शक हुआ, उसने सोचा जरा परीक्षा लेनी चाहिए। बहुत सारे भक्त बैठे थे, सत्संग कर रहे थे, महात्मा जी सुना रहे थे ज्ञान। धीरे से जाके कहता, महात्मा जी थोड़ी सी एक माचिस की तिली दे दो ना। उनको गुस्सा आया, मैं ज्ञान सुना रहा हूं, ये तिली मांग रहा है, गुस्से में ऐसा किया। थोड़ी देर और चला, फिर आया, महाराज थोड़ी सी एक तिली दे दो ना। उनको फिर गुस्सा आया, ये बार बार क्यों आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन सबको तो कह दिया था कि मैं क्रोध हमेशा के लिए छोड़ के आ गया हूं। फिर उसको आंख दिखाई ऐसी, वो फिर बैठ गया। 10-15 मिनट फिर हुए, फिर आके कहता, महाराज थोड़ी सी तिली दे दो ना। तो महाराज को गुस्सा आ रहा कि ये बार बार मेरे भाषण करने में, मेरा ज्ञान सुनाने में बार बार तिली 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 मांग रहा है। फिर उसको जैसे तैसे गुस्सा करके, बड़ी आंख करके बिठाया, लेकिन उसको तो परीक्षा लेनी थी। चौथी बार आ गया, महाराज सिर्फ एक तिली दे दो ना। अब उनसे नहीं रहा गया और गुस्से में चीख कर अपने शिष्यों को बोला, इस कमबख्त को उठा और हाथ पैर तोड़ के जाके जंगल में फेंक के आ जाओ। शिष्य ने बोला, मैं तो समझा था कि यहां तिली होगी, यहां तो ज्वाला धधक रही है। मैंने तो सोचा था आपने गुस्सा छोड़ दिया, तिली मांगी थी, यहां तो ज्वाला धधक रही है। कहने का मतलब, ऐसे ही कई बार हम कहते हैं, मैंने ना ये संस्कार छोड़ दिया। संस्कार छोड़ देते हैं लेकिन उसको जलाते नहीं, उसका अंतिम संस्कार नहीं करते। मर गया व्यक्ति ठीक है, वो कोई काम का नहीं है, लेकिन वो जब तक पड़ा है तब तक शुभ नहीं माना जाता। जब तक उसको ले जाके अंतिम संस्कार नहीं कराएंगे, तब तक कहते कि पानी भी नहीं पीना है। हमने मार दिया, हम कहते मैंने ये संस्कार छोड़ दिया, लेकिन जड़ से उसको उखाड़ के नहीं फेंकते, उसका अंतिम संस्कार नहीं करते कि जल जाए और जलने के बाद भी उसको पानी में विसर्जित करे यानी कभी भी वो लौट के नहीं आए। हम अपने आप से पूछे कौन कौन से ऐसे संस्कार मैंने कई बार बाबा के सामने प्रॉमिस किया, बाबा मैं छोड़ी और कब कब वो बार बार आ जाते हैं। किसी को सहन शक्ति नहीं होती। अब मैं कभी किसी को जवाब नहीं दूंगी, जो भी आएगा सह लूंगी संभालूंगी, लेकिन जब बड़ी बात आ जाती है तो कहते बाबा बात ही इतनी बड़ी आई थी, कैसे मैं सह सकती थी, कैसे मैं समा सकती थी। इसका मतलब आपने बाबा से कहा, अपने आप से कहा कि मैंने सहन शक्ति डाल ली, मैंने समाने की शक्ति डाल ली, लेकिन जड़ से उसको खत्म नहीं किया, ज्ञान की पॉइंट से खत्म नहीं किया। ज्ञान की पॉइंट क्या कि जब जो बात आई, परीक्षा आई, उस वक्त हमें ज्ञान की पॉइंट आ जाए ये व्यक्ति मुझसे अपशब्द कह रहा है, ये मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेने आया है। जो संस्कार को मैंने छोड़ दिया उस संस्कार को ये कहीं ना कहीं हवा दे रहा है, और मुझे उस समय क्या याद आना चाहिए, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ, ये छोटी सी बात मुझे कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन हम नहीं सोचते, एक दो बार तो चुप रहते, लेकिन बाद में अब बात ही उसने ऐसे की थी कि मुझे बोलना पड़ा, बोलना पड़ा, इसका मतलब संस्कार को जड़ से खत्म नहीं किया, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। बस यही एक बात सारे ज्ञान का सार। जो भी कोई पुरानी आदत है इस ज्ञान में आने के पहले की या आने के बाद की भी, क्योंकि बाबा ने कहा है एक अच्छा कर्म करते हो तो उसका मैं 100 गुना फल देता हूं, एक गलत कार्य करते हो तो उसका 100 गुना फल पाप भी लगता है। दुनिया में कितने बड़े बड़े पापी हुए, कंस, जरासंघ, पूतना, कंस को कृष्ण को मारने आए थे, लेकिन बाबा उनका नाम नहीं लेता मुरली में। बाबा दुनिया में सबसे बड़ा विलेन किसको बोलता है, रोज मुरली में किसका नाम लेता है, रावण का। क्यों रावण का नाम लेता है, क्यों रावण का नाम लेता, क्यों नहीं कंस का नाम लेता, जरासंघ का नाम लेता, पूतना का नाम लेता जो कृष्ण को मारने आए थे। रावण ने कुछ गलत नहीं किया था, बहन का बदला सीता को लेके अशोक वाटिका में रखा था, महल में नहीं रखा था, उसके साथ कुछ गलत नहीं करना था, वो तो शिव का सबसे बड़ा भक्त था। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा दुनिया में विलेन रावण माना जाता है, कभी सोचा इस बारे में, क्योंकि रावण ब्राह्मण था, कंस, जरासंघ, पूतना ये ब्राह्मण नहीं थे, वो यादव थे। ब्राह्मण एक गलती करता है तो उसको 100 गुना होता है, और करते हैं तो उसको 100 गुना नहीं होता। हम सब वो ब्राह्मण है, इसके लिए रावण का नाम सबसे बड़े विलेन के रूप में लिया जाता है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, हम भी ऐसी चालाकी ना करें, बाबा को ही बाबा का ज्ञान सुना के बाबा ऐसा तो होता है ना, बाबा ऐसा बोला था इसलिए ऐसा किया ना। लेकिन हम कितनी भी अपनी चला ले होगा तो वही जो विधि का विधान लिखा हुआ है। एक दिन एक व्यक्ति के पास यमराज आए, चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया। व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चालाक था, उसने कहा जाना तो है, चलना तो है, क्यों ना एक एक कप चाय पी ली जाए। यमराज से कहा आप भी एक कप चाय पी लो, थक गए होंगे, मैं भी पी लेता हूं फिर चलता हूं। यमराज ने कहा ठीक है। अंदर व्यक्ति चाय बनाने गया, यमराज की चाय में नींद की गोली डाल दिया, लाके यमराज को चाय दिया, खुद भी पिया, यमराज तो थका हुआ था, वहीं पे नींद आ गई। अब जब यमराज सो गया तो यमराज के हाथ में जो लिस्ट थी वो निकाली, देखा उसका नाम सबसे ऊपर था तो अपना नाम वहां से मिटा के सबसे नीचे लिख दिया। अब 2-3 घंटे के बाद जब यमराज उठे बड़े फ्रेश, का बड़ा मजा आ गया, बहुत दिन के बाद रेस्ट किया, तुमने मेरी बड़ी अच्छी खातरी की है, चलो अभी पहला नंबर छोड़ देता हूं, लास्ट नंबर से शुरुआत करता हूं। समझ गए समझ गए। हम कुछ सोचते हैं लेकिन उसका जो रचा हुआ है होता वही है। इसके लिए कहा जाता है कि जो तू सोचता है वो मैं नहीं सोचता, और तू जो मैं जो सोचता हूँ वो तू नहीं चाहता। तो भगवान कहते हैं कि तू वही सोच जो मैं चाहता हूँ तो वही होगा जो तू चाहता है। हम भगवान जैसा चाहता है वैसा करें तो हम जो चाहते हैं अपने जीवन में वैसा ही होगा। हम ज्यादा चतुराई ना दिखाएं क्योंकि चतुर सुजान हमारा बाबा है। हम अपनी कमी पे पर्दा ना डालें। दर्पण के ऊपर धूल जमी है इसका मतलब दर्पण ने अपना दर्पणत्व खत्म नहीं किया। सिर्फ जैसे ही धूल हटेगी तो आपका चेहरा दिखने लगेगा। आपने गलती पे पर्दा डाल दिया, आपने किसी कड़े संस्कार पे पर्दा डाल दिया थोड़े समय के लिए, इसका मतलब नहीं कि आपकी गलती जड़ से खत्म हो गई। उसको आपको ज्ञान से योग से खत्म करना ही पड़ेगा। और आज आपको एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ अपने कड़े संस्कारों को हमेशा के लिए यहाँ स्वाहा करके जाने के लिए, कि जिंदगी में आज के बाद हर एक दिन ये सोच कर जिए कि मेरी जिंदगी के सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। कहेंगे बहन जी तो क्लास कराते कराते मरने की बात करने लगी। मरे तो हम वैसे ही हैं, बाबा के बन गए तो। लेकिन ये मैं एक उदाहरण दे रही हूं आपको अपने कड़े संस्कारों का अंतिम संस्कार करने के लिए, कि हर एक ये सोचे मेरी जिंदगी के मात्र 24 घंटे बाकी है। सपोज आपको बता दिया गया कल 10 बजे ओम शांति होने वाली है, आप क्या क्या करेंगे इन 24 घंटों में? आप क्या क्या करेंगे बड़ी ईमानदारी से अपने मन में सोच लीजिए, मुझे मत बताइए। आप सोचिए क्या क्या करेंगे, मुझे नहीं बताइए, बड़ी ईमानदारी से कि मुझे पता चल गया 24 घंटे के बाद इन 24 घंटे में क्या क्या करेंगे। आपको मैं एक उदाहरण बताती हूं क्योंकि आज अपने कड़े संस्कारों का अंतिम संस्कार करके जाना है। यहाँ एक व्यक्ति ऐसे ही बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंचे और जाके कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और थोड़ा मेरा भविष्य भी बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा शिष्य तो नहीं बनाता लेकिन तेरा भविष्य बता देता हूं, और तेरे हाथ की रेखाएं देख के तेरा भविष्य ये कह रहा है कि कल 24 घंटे के बाद, वो उस समय रात को 9 बजे पहुंचा था, कल रात को 9 बजे तू ओम शांति। जैसे ही उसने ये सुना तो कल 24 घंटे के बाद मरना है तो तुम्हारे को गुरु बनाने की भी क्या जरूरत है, भागते भागते घर आया। भागते भागते घर आया, सोचने लगा कल मरना है क्या क्या करूं। फोन निकाला, अपने दोस्तों को फोन करने लगा, भाई मेरे कल दोपहर पे मेरे घर भोजन करने आना और मेरा घर खुला रहेगा, आपको जो चीज पसंद आए वो लेके जाना, प्लीज आना। हा हर एक दोस्त को फोन कर रहा है, फोन कर रहा है, फोन कर रहा है। उतने में एक कुत्ता जाते दिखा, कुत्ते को पकड़ के ले आया, रोज मार के भगाता था, आज कबाट में से बिस्किट के पैकेट निकाल ले, ले खा ले खा ले खा ले खा ले, भूखा होगा खा ले। जबरदस्ती 3 पैकेट कुत्ते को बिस्किट के खिला दिए। फिर याद आया जिंदगी में कई लोगों से अपशब्द कह दिए थे, अनबन हो गई थी, ऐसा हो गया। अब जब जाना ही है तो किसी से दुश्मनी क्यों करें? जिनसे कुछ हो गया था संस्कारों की टक्कर, उन सबको फोन किया, भाई मेरे आपसे मैंने अपशब्द कहा था, माफ कर देना, लेकिन आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं कल दोपहर को मेरे घर पे भोजन करने जरूर आना, और मेरे घर में जो चीज रखी आपको पसंद आए फ्री में लेके जाना, प्लीज। हाँ प्लीज। सारे दोस्तों को, सारे दुश्मनों को फोन कर दिया। अब याद आया कि बहुत सारे रिश्तेदार रह गए, रिश्तेदारों को भी फोन करता रहा। फिर एक बिल्ली जाते देखी, बिल्ली को भी पकड़ के ले आया, दूध का टोप उसके सामने रखा, ले पी ले पी ले पी ले, भूखी होगी ना, रोज पकड़ के लकड़ी मारता था जैसे ही दिखती थी। आज बड़े प्यार से बोला, पी ले ना, कल कौन तेरे को पिलाएगा। बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती बिल्ली को दूध पिला दिया। बिल्ली का जा जा जा। फिर याद आया कुछ नाम रह गए, उनको भी फोन करता रहा। सारी रात बीत गई। सुबह जैसे ही दिन निकला, जो बैंक में जहां जहां उसके अकाउंट फिक्स थे, पैसे जमा थे, हर जगह जाके अपने सारे पैसे विड्रॉ कर लिया। सारे पैसे सब जगह अकाउंट क्लोज, मरना तो है आज। और जो जो संस्था में जहां जहां उसकी भावना थी, हर जगह जाके दान कर दिया। 5-स्टार होटल में खाने का ऑर्डर भी दे दिया। और ये सब करते करते दोपहर हो गई। जब दोपहर को घर लौटा तो देखा मेहमानों का आना तो शुरू हो गया था। आइए 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 आइए, सब लोग बड़े खुश। क्या बात है भाई, लॉटरी लग गई क्या करोड़ों की? खाना भी खिला रहे, कह रहे जो चाहिए ले जाओ। कहा हाँ, ऐसे ही समझो, ऐसे ही समझो। सब बहुत हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। खाना खाया, किसी को लैपटॉप अच्छा लगा ले जाओ प्लीज ले जाओ, हाँ टीवी हाँ ले जाओ प्लीज ले जाओ, बाइक हाँ प्लीज ले जाओ, जिसको जो चाहिए। और करते करते शाम के 5 बज गए। सबने खाना खा लिया, घर पूरा खाली, जेब पूरी खाली। होटल में फोन किया, आपके बर्तन और पैसे ले जाओ। वो लोग आए, पेमेंट लिया, बर्तन लिए, चले गए। अब बज गए 6। अब 3 घंटे बाकी। अब 3 घंटे क्या करूं? वो काम करता हूं जो जिंदगी में कभी नहीं किया। और वो काम कौन सा? वो काम कौन सा? कभी भगवान को याद नहीं किया। जब मरने की बात सुनाई देती ना, तब भगवान ज्यादा ही याद आते। भगवान को याद करता हूं, हे ईश्वर अब तो आपके ही पास आना है। जिंदगी भर कभी याद करने का मौका ना मिला, अब आपके पास आ रहा हूं। हे ईश्वर बस अब आपके पास आया। आप दीन दयालु हो, कृपालु हो, मेरे पापों को क्षमा करोगे। और ऐसे करते 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 क्या अच्छा योग लग गया परमात्मा से। कितने घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। आंख खोली, सामने देखा, घड़ी रखी थी 9:30 बजे। 9:30 कैसे बच सकते हैं? महात्मा जी ने तो कहा था 9 बजे मरेगा। फिर अपने आप को मार के कहता, नहीं नहीं, मौत के डर से घड़ी तेज भागते दिख रही, 8:30 बजे, 9:30 नहीं, भगवान को याद कर, अपने आप को बोल रहा। फिर याद करने बैठा, हे ईश्वर बस आधा ही घंटा और बाकी, मैं आया कि आया, आया कि आया, आया कि आया। फिर खोल के देखा तो 10 बज गए। अब नहीं रहा गया, एक दो जगह फोन करके पूछा, कहा 10 बज गए। भागते भागते महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी महात्मा जी, आपने कहा था तू 10 बजे मरेगा, मैं तो नहीं मरा। महात्मा जी ने कहा, तू मरने वाला भी नहीं था। कहा मैं मरने वाला नहीं था? कहा नहीं। तो फिर आपने क्यों कहा कि तू मरने वाला है? कहा वो बाद में बताऊंगा, ये बता कि तेरे ये 24 घंटे कैसे बीते। कहा सच बताऊं? कहा गुरुजी बोल रहा है तो सच ही बताना। कहा गुरुजी मेरी पूरी जिंदगी बेकार, अगर पूरी जिंदगी में मेरी सबसे बेस्ट दिन थे ये 24 घंटे, मेरी जिंदगी के स्वर्णिम काल थे। गुरुजी ने कहा अच्छा, ऐसा क्या क्या किया? कहा गुरुजी क्या नहीं किया, दोस्त को भी प्यार किया, दुश्मन को भी प्यार किया, रिश्तेदारों को भी प्यार किया, कुत्ते को भी प्यार किया, बिल्ली को भी प्यार किया, जो कुछ धन था सब दान कर दिया। और सबसे बड़ी बात, पूरी जिंदगी में कभी 4 घंटे भगवान को याद नहीं किया था, वो मैंने इन 24 घंटे में किया, इसके लिए मेरा ये सबसे स्वर्णिम काल था। आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको पता चले 24 घंटे हैं तो भले ही आप 100 साल और जियो, लेकिन हर दिन ये सोच के जियो जिंदगी के 24 घंटे बाकी है, आप क्या करेंगे? आप किसी से अपशब्द नहीं बोलेंगे, आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, आप किसी से दुश्मनी ईर्षा द्वेष नहीं करेंगे, आप जो कुछ है कहेंगे ले जाओ, जाना तो है। बाबा भी कहता आप मरे मर गई दुनिया, हम मरे तो हमारे पीछे दुनिया रहे ना रहे, हम मर गए तो दुनिया खत्म। तो जो कुछ है बांटते जाएंगे, और सबसे ज्यादा क्या करेंगे? भगवान को याद करेंगे। अगर ये एक बात यहाँ पे गांठ बांध लीजिए, हर दिन ये सोच के चलिए मेरी जिंदगी के मात्र 24 घंटे बाकी हैं, जितना ज्यादा आप भगवान को याद करेंगे, हर चीज सफल करेंगे, तो नेचुरली भगवान अपनी गोद में उस अत्यंत सुख के झूले में झुलाएगा और यही होगा अपने कड़े संस्कारों का अंतिम संस्कार। तो आप सबसे यही कहूंगी, आज सच्ची दिल से पूछना और हर दिन के लिए ये पक्का बांध लीजिए, बस अब 24 घंटे और बाकी है, 24 घंटे बाकी है, मुझे कुछ बुरा नहीं करना है। जो संस्कार होंगे भी तो वो संस्कार आपको इस बात से खत्म कर देंगे कि 24 घंटे के लिए क्यों मैं किसी को दिल दुखाऊं, क्यों किसी का बुरा करूं। और वही हमारा जिंदगी का अपने कड़े संस्कारों का अंतिम संस्कार होगा। तो आशा करती हूँ कि इस रुद्र महायज्ञ में आप अपने कड़े संस्कारों को छोड़ के जाएंगे, ताकि कल से आप वो अतीन्द्र सुख के झूले में झूलने का अनुभव करें, जो हम ब्राह्मण बच्चों की सबसे बड़ी प्राप्ति है। अभी हम 3 मिनट योग करेंगे। बाबा को अपने मन से बता दीजिए कि आप कौन कौन से कड़े संस्कारों को इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करके जा रहे हैं, और साथ ही साथ बाबा से शक्ति भर के जाएंगे, बाबा शक्ति देंगे ताकि हम अपने परमात्मा का जितना समय बाकी है संगम का, उतना समय हर दिन बहुत बहुत ज्यादा देर तक बाबा की गोद में झूल सके। तो महसूस करें शांत स्वरूप आत्मा प्रकृति के बीच विराजमान, जैसे दीप में ज्योति, सीप में मोती, मैं आत्मा इस प्रकृति सिंहासन के बीच विराजमान हूं। मुझे अपने प्राण प्यारे शिव बाबा से मिलन मनाने और एक प्रतिज्ञा सुनाने अपने वतन की ओर जाना है। तो महसूस करें चमकती हुई आत्मा निकली और ऊपर वतन की ओर जा रही है। जगमग करती एक ज्योति परम धाम की ओर चली, अपने वतन, अपने पिता परमात्मा से मिलन मनाने, बादलों से पार, चंद तारों से पार, 5 तत्वों के भान से प्यार, मैं आत्मा लाइट और माइट स्वरूप ऊपर ही ऊपर उठते जा रही हूं और पहुंच गई अपने वतन, अपने पिता परमात्मा के सामने, मीठे प्यारे निराकार शिव बाबा अपनी दिव्य किरणें रूपी बाहें फैलाए मेरा आवाहन कर रहे हैं, आओ मेरे लाल, आओ आओ धरती के सितारे, बाबा की आंखों के तारे आओ। और मैं बाबा के करीब पहुंची, बाबा ने मुझे आत्मा को अपनी बाहों में भर लिया। महसूस करें ईश्वरी शक्तियों को, आत्मा परमात्मा का मिलन, परमात्मा अपनी गोद में झुला रहे हैं। अत्यंत सुख का अनुभव, मैं और बाबा, बाबा और मैं, सारे दिव्य कुंती दिव्य शक्तियां मुझ में भरती जा रही, और मैं आत्मा कह रही हूँ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, आपका हाथ और साथ सदा मुझ पर बना रहे, आपकी गोद में सुख इलाही है, बस यूं ही अपनी गोद में झुलाते रहे। मीठे बाबा, आज मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूं कि अपने सारे कड़े संस्कारों को इस मधुबन रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करके जाऊंगी, ताकि रोज आपकी गोद में इसी तरह परमानंद का अनुभव कर सकूं। वारे मेरा भाग्य, वारे भाग्य विधाता परमात्मा, आज जीवन धन्य धन्य हो गया। बाबा मानो कह रहे हैं, बच्ची सदा सुखी भाव, अमर भाव, पवित्र भाव, योगी भाव, बाबा की दिव्य शक्ति, दिव्य गुण और दिव्य वरदानों को अपने अंदर भर कर मैं आत्मा महाज्योति परमपिता परमात्मा की गोद से निकलकर एक बिंदु सिंधु बनकर, एक ज्योति दिव्य ज्योति बनकर नीचे की ओर आ रही हूं। धीरे धीरे पांच तत्वों की दुनिया में प्रवेश किया और नीचे आई, अपने इस पांच तत्व के शरीर में प्रकृति सिंहासन पर आकर विराजमान हो गई और प्यारे बाबा की अष्ट शक्तियां अष्टरंग की किरणों में अब तक मुझ पर निरंतर बरस रही है, वरदान दे रही है। महसूस करते रहें ईश्वर की शक्तियों को, भरपूर कर लें जन्म जन्म के लिए अपनी आत्मा को इस ईश्वरी शक्ति से। ओम शांति।